Good evening and Om Shanti. I welcome you all for this third session of e-conference on theme Enhancing the Quality of Life. Morning, you had a great session with B.K. Shivaniji. Now, it's a great weekend that Swaminathan Ji will speak on a great topic, Science of Well-being. We all aspire for well-being, particularly during this period when health issues have reached alarming proportions. Swami Bhai, a great orator, motivational speaker, and management trainer, has a wonderful journey after completing B.Tech from Calicut University. As a professor of engineering study, he started a career, and meanwhile, his association with Brahma Kumaris made him develop training acumen to create right awareness among every sections of society, students, youth, managers, scientists, medical professionals, university professors, and defense personnel. Thousands of industries, organizations, universities have benefited from his training modules. Let's listen to him from God's own land, Kerala, where he is presently located, Dr. Swaminathan Bhaiji.
Om Shanti and Namaskar. On behalf of the Scientists and Engineers Wing and the Brahma Kumaris Ishwari Vishwavidyalaya, I extend a very, very hearty welcome to all of you, my dear divine brothers and sisters. आप सभी का मैं बहुत दिल से, स्नेह से स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ. How is your well-being? आप सब कैसे हैं? हालचाल कैसा है? मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं. I am also fit and fine. I am right now in God's own country. I am in the north part of Kerala, which is called as Kannur. और यहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रकृति के बीच में मैं यहाँ पर हूँ. और आज आपको मैं प्रकृति के साथ साथ एक सुंदर यात्रा पर लेकर चलूंगा. फ्रेंड्स, द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज द साइंस ऑफ वेलबींग. खुशनुमा जीवन का विज्ञान क्या है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विज्ञान किसको कहते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज साइंस? बेसिकली साइंस ट्राइज टू फाइंड आउट द फंडामेंटल लॉस विच इज देयर इन द नेचर. दोस्तों, हमारे प्रकृति में, इस पूरे पृथ्वी में जो सैद्धांतिक सत्य है, उस सत्य की खोज विज्ञान करता है. एक बार हमने उस सैद्धांतिक सत्य को समझ लिया, उस सत्य का जो एप्लीकेशन है वो हमारे इंजीनियर्स और टेक्नोक्रेट करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी. वो इस सत्य को कहीं कोई सिस्टम या कोई प्रोडक्ट पे करते हैं ताकि हमारा जीवन बहुत बहुत खुशनुमा हो, आनंदमय हो. In fact, all discoveries and inventions are made to bring happiness to this entire humanity. So, दोस्तों, आज हम इस विज्ञान को समझते हुए, कुछ इंजीनियरिंग विषयों को समझते हुए, हम अपने जीवन को खुशनुमा कैसे बना सकते हैं, इस सुंदर यात्रा पर हम चलेंगे. ओके, नाउ मैं इस झूले पे बैठा हूं और ये झूला जो है ना, झूलता है. The thing moves like a pendulum. इसके पीछे भी एक विज्ञान है. मैं आपको उस विज्ञान को समझाने की कोशिश करता हूं. राइट नाउ आई एम इन दिस पोजीशन. हम धीरे से इसको पीछे लेकर आते हैं और फिर एक जितना हम पीछे इसको पुश करते हैं तो एक मोमेंटम मिलता है, मास इनटू वेलोसिटी. जिस मोमेंटम के द्वारा हम जितना हाइट को कवर कर सकते हैं, जितना ऊंचाई को कवर कर सकते हैं, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. एंड देन पोटेंशियल एनर्जी अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज हाउ The swing moves to and fro. Correct? ये तो था विज्ञान. लेकिन आज हम इस स्विंग के विज्ञान को समझते हैं अपने जीवन के लिए. क्यों कहा जाता है लाइफ इज ऑल्सो लाइक अ स्विंग. हमारा जीवन भी एक झूले की तरह है, इसमें भी बहुत ऊंचाइयां होती है, कभी कभी हम नीचे की तरफ आते हैं. लेकिन हमें समझना क्या है इस पॉइंट में, आज इस सारी जो अवस्था है उस अवस्था में हम लोग, वी आर द लोवेस्ट पॉइंट. हम सबसे नीचे वाले पोजीशन पर हैं, जहां माई फीट आर ग्राउंडेड, मेरा पैर जमीन पर है। अब जब ये लॉकडाउन सब पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, तब शायद हम 40 या 50 दिन पहले थे उसके हम पीछे वाले सिचुएशन में होंगे, कोई बात नहीं, दैट एब्सोल्युटली ओके। लेकिन फोकस ये होना चाहिए कि हम जितना पीछे मुड़कर और जितना हम इस समय पर अपने आप को पुश कर सकते हैं, उतना हम ऊंचाई में जा सकते हैं। दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी के समय को हमें यूटिलाइज करना है, उस एनर्जी को, उस शक्ति को अपने में लेकर आके, ताकि हम जितना अपने आप को पुश करें। एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। समय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो वी आर द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ टाइम, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे विश्वास है कि पिछले 40 या 50 दिन में आपने समय का सदुपयोग जरूर किया होगा। अगर नहीं भी किया है, ये पूरा सेटल होने में कुछ टाइम लगेगा, कैन वी मेक द बेस्ट यूसेज ऑफ अ टाइम। मैं आप सबको बहुत खुशी से बताना चाहता हूं कि मैंने अपना समय कैसे स्पेंड किया। आई ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी, एंड वन ऑफ द थिंग विच आई ट्राइड वाज टू प्ले कैरम गेम्स। मुझे हर दिन सुबह अपने पापा के साथ, 84 ईयर्स ऑफ एज, बहुत सुंदर गीत संगीत बैकग्राउंड में रखकर मैं और मेरे पापा जो है कैरम्स खेलते हैं। फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू प्ले अ राउंड ऑफ कैरम्स विद स्वामी भाई। चलिए, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हम लोग ये गेम कैरम्स साथ में खेलते हैं। ओके, इट इज सेड दैट लाइफ एंड टाइम आर द मोस्ट इफेक्टिव टीचर्स। जीवन और समय बहुत महत्वपूर्ण शिक्षक है। लाइफ teaches us how to make the best use of time, and time, when time comes, tells us the importance of life. जीवन में ये सिखाता है दोस्तों कि आप समय का कैसे सदुपयोग करें, और समय समय आने पर जीवन का मूल्य बताता है। तो चलिए, let's not waste time, let's play this wonderful game of carom. दोस्तों, अगर हम कैरम का गेम खेल रहे हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि उसके नियम क्या है। What are the rules? What are the regulations? And that is what is called as science. देखिए, पहले ये पूरा जो कॉइन जो थे ना, बहुत स्टेबल कंडीशन में थे, बहुत स्थिर कंडीशन में थे। स्ट्राइकर आता है, उसको हिट करता है, इमीडिएटली अस्थिरता की तरफ जाता है। इट्स ऑल अबाउट अनस्टेबिलिटी, एंट्रोपी बढ़ जाता है, डिसऑर्डर बढ़ जाता है। देखिए, इसके बाद नियम क्या होता है, उसका फ्लो चार्ट क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका एल्गोरिदम क्या है। स्ट्राइकर हर कॉइन को हिट करता रहता है, और कॉइन धीरे धीरे अपने जो पॉकेट्स हैं, जो उनका अपना डेस्टिनेशन है, वहां वो पहुंचता है। फिर उसके बाद सारे कॉइन्स जो होते हैं फिर से बोर्ड में आ जाते हैं, एंड यू आर अगेन एबल टू सी अ वेरी स्टेबल कंडीशन। दिस इज द रूल ऑफ कैरम। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 1-1.5 महीने पहले हमारा जीवन बहुत स्थिर था, हम बहुत अपने कंफर्ट जोन में सुखदायी थे। अचानक एन इनविजिबल वायरस, एक अदृश्य अंग कहीं से आता है और हमारे जीवन को पूरी तरह छिन भिन कर देता है। इट मेक्स द लाइफ एब्सोल्युटली अनस्टेबल। प्रश्न होता है कि उसने किसको अनस्टेबल किया। एक्चुअली जो हम अनस्टेबल सबसे पहले हुए ना दोस्तों, वो हमारे अपने मन को, हमारे संकल्प, क्या होगा, कैसे, कब, कहां, हाउ, वाई, वेयर, व्हेन, और इतने सारे संकल्प जो हमारे मन में आजकल आते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे जीवन को अगर स्थिरता में फिर से अगर लेकर आना है, तो उसकी टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा, उस विधि को हमें समझना पड़ेगा कि हम अपने मन को फिर से स्टेबल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में हम और आप एक सब्जेक्ट पढ़ते थे, उस सब्जेक्ट का नाम था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, राइट? इनफैक्ट हमको ये सिखाया गया था, इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट बैलेंस, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल, इट्स ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम। हमारे जीवन में भी वो स्थिरता बहुत बहुत जरूरी है। अभी हमारे मन में कितने संकल्प चलते हैं, हमारा जॉब का क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य हमेशा ऐसा ही रहेगा क्या, बच्चों का एडमिशन होगा, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, देयर इज सो मच ऑफ इनसिक्योरिटी। और ऐसे समय पर विधि जो है कि हम अपने मन को जो इतना तरफ छिन भिन हो रहा है, उसको स्थिरता की तरफ लेकर आए। और कैसे लेकर आएंगे, जब हमारे मन को हम एक बहुत अच्छे दोस्त बनाते हुए उनको समझाएंगे. कैन वी मेक आवर माइंड आवर वेरी बेस्ट फ्रेंड. अब प्रश्न होता है कि हम अपने मन को कैसे दोस्त बनाएं, वो हम आगे जरूर जरूर सीखेंगे. और हम प्रकृति के नजदीक जाते हैं, हम नीचे उतरते हैं, और इस प्रकृति के सानिध्य में मन को कैसे अपना अच्छा दोस्त बना सकते हैं, इस पर विचार करेंगे. चलिए दोस्तों, अब हम प्रकृति के नजदीक जाते हुए इस बात पर विचार करेंगे कि हम अपने मन को एक बहुत अच्छा दोस्त कैसे बना सकते हैं. दोस्तों, आपने और हमने अनुभव किया होगा कि जब भी हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती है जिससे हम भारी बन जाते हैं, उस समय अगर हमने एक बहुत अच्छे दोस्त या सखी से बात किया तो हम कितने हल्के, कितना रिलैक्स्ड और कितना इजी फील करते हैं. उसी तरह अगर मैं अपने मन को एक बहुत अच्छा दोस्त बना सकता हूँ, इफ आई कैन मेक माई माइंड अ वेरी गुड एंड अ बेस्ट फ्रेंड, तो जो मेरा मन इतना अस्थिर है वो ऑटोमेटिकली सुखदायी हो जाएगा, मेरा मन ऑटोमेटिकली खुशनुमा बन जाएगा. अब प्रश्न उठता है कि हम अपने मन को एक बहुत अच्छा दोस्त कैसे बनाएं, और वो बहुत सहज है, उसका विज्ञान बहुत इजी है, अपने मन से बात कर. वी हैव टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट विद आवर माइंड, एंड फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द माइंड. मन की भाषा कौन सी है? एक बार मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द माइंड, तो मेरे सारे विद्यार्थियों ने कहा, सर इट्स आउट ऑफ सिलेबस, मन के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो उसकी भाषा के बारे में हम कैसे जानते हैं. मैंने कहा ओके, आई कैन अंडरस्टैंड. फिर मैंने कहा ओके, नाउ आई विल आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ एन इंजीनियर, एक अभियंता की भाषा कौन सी है? और मेरे स्टूडेंट एक ने खड़े होकर कहा, सर इट्स इंजीनियरिंग ड्रॉइंग, इट्स ग्राफिक्स, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज द लैंग्वेज ऑफ द माइंड. हमारा मन जो भाषा समझता है दोस्तों, वो है चित्रों की भाषा. It's a language of the mind. चित्रों की भाषा, right? What we need to understand is, we who thought we can control everything, actually we can control only three things. हमने जो सोचा दोस्तों कि हम सारे विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर सत्य को देखें ना, हमसे तीन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं. Number one is the thought. Number two, the image that it creates. And number three is the action. एक जो हम संकल्प करते हैं, दूसरा उस संकल्प के द्वारा जो चित्र बनता है, और उस चित्र के आधार पर जो हम अपना कर्म करते हैं, बस इन तीन बातों पर हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं. और ऐसे समय पे ये प्रश्न उठता है कि अब मैं ऐसा कौन सा संकल्प क्रिएट करूं इट विच विल एड वैल्यू टू माई वेलबींग, ऐसा कौन सा संकल्प मैं करूं जिससे मेरा जीवन और सुखदायी बन जाएगा, वो मैं संकल्प कैसे करूं, कैसे मैं अपने मन से बात करूं. दोस्तों, आपको याद है जब हम इंजीनियरिंग पढ़ते थे तो हमारा एक बहुत सुंदर सब्जेक्ट था जिसको SOM कहते थे, SOM. तो मैं जब स्टूडेंट से पूछता था कि ये SOM का फुल फॉर्म क्या है, तो सभी कहते थे इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. लेकिन मैंने कहा यस, उसके पहले एक और हम इसको यूज कर सकते हैं. हमारे जीवन में SOM का अर्थ है, नंबर वन इट्स द स्ट्रेंथ ऑफ आवर मसल, एंड नंबर टू द स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड. जैसे शरीर जो है हार्डवेयर है, पर हमारा मन जो है इट वर्क्स लाइक अ सॉफ्टवेयर, राइट? तो शरीर को अगर हमें शक्तिशाली बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू गिव मूवमेंट. हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं. लेकिन अगर हमें मन को शक्तिशाली बनाना है तो उसकी विधि है स्टिलनेस, एकदम शांत. हम जितना हो सके हम कम संकल्प करें. इसे मन को शांत करने के लिए बहुत सुंदर विज्ञान है, और वह नींद, स्लीप इसे कहते हैं ना. जो व्यक्ति को अच्छी नींद आती है वो बहुत बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, क्योंकि नींद पर हमारे जो क्वांटिटी ऑफ संकल्प ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, राइट? लेकिन हमारे संकल्पों की क्वांटिटी तो कम हो जाती है, लेकिन संकल्पों की क्वालिटी को कैसे बढ़ाएं, और वहां पर वो विधि सीखना बहुत बहुत जरूरी है.
चलिए, अभी तक जो हमने समझा है अब हम उसका अनुभव करेंगे. हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी होता है ना, थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल. तो अभी मन में जो संकल्प है उसकी हम गति को कम करेंगे और उसकी संख्या को कम करेंगे, और मन में जो संकल्प है उसकी गुणवत्ता को हम बढ़ाएंगे. उसके लिए आप मेरे साथ चलना. जैसे मैं जो संकल्प दूंगा वो संकल्प जो है आपके मन तक पहुंचेगा, जैसे हमने सीखा मन की भाषा चित्र है, आप उस चित्र को बनाना, और जितना समय आप उस चित्र को देख सकते हैं और अगर आप मेरे साथ चल सकते हैं, दैट इज योर पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब है आपकी एकाग्रता की शक्ति बहुत अच्छी है। एक और बात का ध्यान रखेंगे, जब हम वो चित्र बनाते हैं तो जो भावना है उस भावना को भी, उस इमोशंस को भी फील करना। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं कहूंगा सुबह सुबह का सूर्योदय, ये संकल्प आपके मन तक पहुंचेगा, आपका मन उसका चित्र बनाएगा। तो आप देखना पहाड़ी के पीछे से लाल रंग का सूर्योदय, तो वो इमोशंस को भी फील करना। तो कौन सी इमोशंस को आप जनरेट करेंगे? तो सुबह सुबह का सूर्योदय आशा और विश्वास का प्रतीक है। इट्स अ सिंबल ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट? और ऐसे ऐसे करके हम चलते रहेंगे, ठीक है? तो चलिए हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट का प्रयोग करेंगे। आप चाहिए तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। अब बैठे हुए मन के द्वारा सुबह सुबह का सूर्योदय देखिए, पहाड़ी के पीछे से लाल रंग का सूर्योदय जो आशा और विश्वास का प्रतीक है। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस पहाड़ी को देखिए जो शक्ति का स्वरूप है, खुले आसमान को देखिए जो बेहद प्रकृति है, खुले आसमान में पंछियों को उड़ते हुए देखिए, स्वतंत्र पंछियां, आजाद पंछियां, पंछियां उड़ते उड़ते सुंदर से फूलों के बगीचे में, आप सुंदर से बगीचे को आप देखिए, फूलों को देखिए, रंग बिरंगे फूलों को देखिए, उसकी खुशबू को महसूस करिए और ये श्रेष्ठ संकल्प करिए कि मुझे भी अपना जीवन ऐसे ही खुशबूदार बनाना है। ओम शांति। अब धीरे से अपने आंखें खोलिए, कैसा लगा संकल्प? श्रेष्ठ, बहुत विशेष चित्र और अच्छी भावनाएं, इट्स द फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। ऐसे समय पर यह हो सकता है कि अचानक फिर एक संकल्प आए, ठीक है मैंने अच्छा फील जरूर किया, लेकिन परिस्थिति तो वैसे ही है, मेरी चुनौतियां तो वैसे ही है, उसका कैसे निवारण हुआ? प्रॉब्लम इज स्टिल देयर, प्रॉब्लम इज एग्जिस्टिंग, तब मैं क्या करूं? पता है ये अवस्था कैसी होती है दोस्तों? पानी होता ना, आपने देखा होगा पानी जो होता है वह शांत और शीतल होता है। अचानक आप उस शीतल और शांत पानी में अगर एक पत्थर मारते हैं तो क्या होता है? अचानक बहुत सारी लहरें आने लगती है और फिर से हलचल की स्थिति हो जाती है। अगर हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है, नथिंग टू वरी, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अब हम एक काम करते हैं, हम पानी के नजदीक जाकर इसका रहस्य समझते हैं कि ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए। ओके, हाउ डू आई गेट द सॉल्यूशन फॉर माय प्रॉब्लम? और शांत रहने से सॉल्यूशन कैसे मिलता है, दिस विल गो टू विल फाइंड आउट। चलिए आप मेरे साथ चलिए। मेरे घर के नजदीक एक छोटा सा नदी है, ये बहुत प्यारा सा नदी है, इट्स अ वेरी पीपल फ्रेंडली स्ट्रीम हम बोल सकते हैं। पहाड़ी से वो पानी आता है और ये बहुत स्वच्छ पानी है और पूरा साल तो बहता रहता है, अभी थोड़ा सा पानी कम हो गया है, राइट? हम इस फ्लूइड डायनामिक्स को यहाँ समझते हैं, राइट? एक छोटा सा पत्थर जब हम इस पानी में डालते हैं तो देखिए कितनी लहरें उठती है, करेक्ट? हमारे जीवन में भी, हमारे मन में जब इसी प्रकार का कोई संकल्प चलता है तो इसी प्रकार की लहरें चलने लगती, क्या होगा, कैसे होगा, कब, क्यों, राइट? ये सारी लहरें उठने लगती है। तो शायद जीवन में ये फ्लूइड डायनेमिक्स को समझना बहुत बहुत जरूरी है। हमने बचपन में एक विज्ञान पढ़ा था विच वॉज कॉल्ड एज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑफ बोयंसी। वी से द बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, राइट? ये हमने बचपन में सीखा है और इसी आधार पर बचपन में हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया गया है कि वाई डज अ शिप सेल एंड हाउ डज अ नेल सिंक। तो हमें ये बात समझ में आई एज पर द आर्किमिडीज लॉ ऑफ बोयंसी कि एक बहुत बड़ा जहाज जो है वो आराम से पानी में तैर सकता है, लेकिन एक छोटी सी जो खीली है वो पानी में डूब जाती है, करेक्ट?
अब इसी को अगर हम जीवन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक 6 महीने का बच्चा राइट, अगर हम उसको पानी में डालते हैं तो हमारे मन में संकल्प आता है कि वो डूब जाएगा। लेकिन मेरे छोटे भाई हैं गिरीश भाई, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्राडीकार्डिक रिस्पॉन्स या ब्राडीकार्डिक रिफ्लेक्स। 6 महीने के बच्चे को अगर हम पानी में डालते हैं, बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, वो डूबेगा नहीं। वो अपने श्वास को पकड़ सकता है और वो अपनी आंखें खुली रख सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो जन्म के 9 महीने जो वो मां के गर्भ में था तो वो एमनियोटिक फ्लूइड में इसी को महसूस कर रहा था। वो अपने श्वास को बंद करके रखा था, उसका अभ्यास उसको उस समय पर महसूस होता है। अगर यही 6 महीने का बच्चा जब बड़ा होता है और 10 साल का बन जाता है और वो अगर स्विमिंग पूल में जाता है तो सबसे पहले वो पानी को देखकर इमीडिएटली डर जाता है और उसके मन में यह संकल्प आता है कि नहीं मैं डूब जाऊंगा। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि 10 साल तक चाहे वो माता पिता हो या हम शिक्षक हो या समाज हो, उसको बार बार ये डर का संकल्प देते हैं, पानी है तुमको कुछ हो ना जाए, तुम डूब जाओगे। और जैसे हम बार बार का हम संकल्प करते हैं दोस्तों, वो हमारे संस्कार बन जाते हैं, इट बिकम्स अ रिपीटेटिव प्रोग्रामिंग राइट। और डर और भय किसी भी प्रॉब्लम का निवारण नहीं है। इसलिए वर्तमान परिस्थिति में अगर हम बार बार नेगेटिव संकल्प करेंगे तो हमें अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे मिलेगा। मैं आज आप सभी को एक खुशखबरी देता हूं, हर ताले की चाबी होती है और जिस चाबी को आप ढूंढ रहे हैं वो चाबी आपको ही मिलेगी। हम ढूंढते भी हैं लेकिन मिलती क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों जीवन का विज्ञान ये है कि अगर कोई वर्तमान समय पे कोई परिस्थिति बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम ताले की तरह है, इट्स लाइक अ लॉक, और आप चाबी ढूंढ रहे हो और चाबी आपको ही मिलेगी। लेकिन ये जो चाबी है ये पानी के अंदर है, ओके? अब अगर पानी को आप हलचल करते हो तो आपको चाबी दिखाई नहीं देगी, लेकिन आपको बहुत धीरज रखना होगा। जैसे ही ये पानी शांत होती है तो आपको आपकी चाबी खुद दिखाई देगी। चलिए हम देखते हैं, राइट, ये चाबी है, हम इस पानी को डालते हैं। अब जैसे ही ये होगा तो आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, चाबी अभी नीचे है, पानी एकदम शांत है तो मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैं इस पानी को हलचल करता हूं, पानी को हलचल करूंगा तो मुझे चाबी दिखाई नहीं देगी। इसीलिए जीवन का विज्ञान ये है, फॉर वेलबींग, मन को शांत जैसे ही हम करेंगे, स्थिर करेंगे, तो मेरी जो परिस्थिति की जो ताला जो अटक गया है उसकी चाबी मुझे खुद मिलेगी। अब प्रश्न उठता है कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की चाबी कौन सी है, अर्थात चाबी मतलब जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ माय लाइफ, इस पर चिंतन करना बहुत बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स फाइंड आउट द कीज ऑफ आवर लाइफ। जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर लाइफ, राइट। दोस्तों बचपन में मेरे पापा मुझे हमेशा कहते थे कि आपको इंजीनियर बनना है, तो मैं पापा से बड़े प्यार से पूछता, पापा मैं इंजीनियर क्यों बनूं? पापा कहते थे अगर आप इंजीनियर बनोगे तो आप बहुत सफल होंगे, आप बहुत धन कमा सकते हो, आप नामी ग्रामी बनेंगे, राइट। तो दोस्तों इस चक्कर में पता क्या हुआ, इस चक्कर में आई अंडरस्टूड व्हाट इज HMT। इंजीनियरिंग में हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा था जिसको कहते थे HMT, हीट एंड मास ट्रांसफर। मेरे साथ आप सबका भी अनुभव होगा कि इस लक्ष्य सफलता धन और नामी ग्रामी बनने में हम कितना ज्यादा क्रोध, कितना ईर्ष्या और अहंकार का अनुभव करते हैं। दिस इज व्हाट इज द हीट एंड मास दैट वी हैव बीन ट्रांसफरिंग ऑल अक्रॉस, राइट। कहते हैं द कोरोना वायरस हैज शेकन अस टू अवेकन अस, राइट। हमें क्या बात समझने को मिली, हमने और आपने सोचा कि हम इस पूरे पृथ्वी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा वायरस ने, चाहे हम कितने भी सफल क्यों ना हो, कितने भी धनी क्यों ना हो, कितने भी नामी ग्रामी क्यों ना हो, अदृश्य वायरस ने हमको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया चिंतन करने के लिए कि हमारी कैसे अंदर की प्रकृति कैसी है। दोस्तों व्हाटएवर वी आर सीइंग आउटसाइड द आउटसाइड नेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ नेचर इनसाइड। बाहर की प्रकृति हमारे अंदर की प्रकृति का प्रतिबिंब है। अगर हमें बाहर की प्रकृति को ठीक करना है तो वी हैव टू मूव इनवर्ड और अपने लक्ष्य को और रिफाइन करें, हमारा जीवन का लक्ष्य। तो हमें अपने जीवन के लक्ष्य को फिर से उसको रिफाइन करना पड़ेगा, रीडिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा लक्ष्य है वैसा लक्षण होगा, राइट। और हमने सबने लॉ ऑफ कर्मा को समझा है, इट इज अ लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव का। जैसे जैसा लक्ष्य को अगर हम ठीक करेंगे तो शायद हम भी ठीक हो जाएंगे और ये सारी समस्त पृथ्वी भी ठीक हो जाएगी। तो एक बार मैं छोटे छोटे बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा था और मैंने बच्चों से पूछा, अच्छा बच्चे बताओ आपका जीवन का लक्ष्य क्या है। तो एक बच्चे ने खड़े होकर कहा, सर ऑप्शन सर। मैंने कहा, कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है क्या? बोला, सर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैंने कहा ओके, आई गिव यू फोर ऑप्शन और आप सभी बच्चे सोच समझ कर सही ऑप्शन को चूज करना। ऑप्शन ए इंजीनियर, ऑप्शन बी साइंटिस्ट, ऑप्शन सी मैनेजर एंड ऑप्शन डी अ गुड ह्यूमन बीइंग। और सारे बच्चों ने बड़े खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, सर ऑप्शन डी लॉक कर दो, अ गुड ह्यूमन बीइंग, राइट। माय डियर फ्रेंड्स, उन बच्चों का जवाब सुनकर लगा कि हमें बड़ों को बहुत कुछ ही सीखना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, राइट। एच फॉर होलिस्टिक एंड एम फॉर मीनिंगफुल। हमारा लक्ष्य श्रेष्ठ होना चाहिए, हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि हम सफल जरूर हुए लेकिन सारे विश्व को भी वो मदद मिले, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम गुड ह्यूमन बीइंग की तरफ बढ़ने लगते हैं और जब हम होलिस्टिक लक्ष्य होता है तो सबसे बड़ा सिम्टम हमें दिखाई देता है, वी बिकम रियली हैप्पी। और जब हम अपने जीवन की मीनिंग, एम फॉर मीनिंग को समझते हैं तो आवर वॉइस बिकम्स वेरी वेरी मेलोडियस। कहते हैं एक छोटा बच्चा दिन में 300 बार मुस्कुराता और खुश होता है। मैं अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एक बहुत सुंदर विषय सिखाता हूं, उस विषय का नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। थोड़ा कठिन विषय है, तो 3-4 महीने मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाता हूं और 4 महीने के बाद जब मेरे बच्चे तैयार होते एग्जामिनेशन हॉल में जाने के लिए तो मैं अपने बच्चों को कहता, बच्चों जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और जैसे आपको प्रश्न पत्र मिलेगा 10 प्रश्न और एक भी प्रश्न का जवाब नहीं मालूम, उस वक्त भी अगर आप मुस्कुरा सकते हो तो जीवन के हर परीक्षा आप जरूर पास हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर तो वह जिंदगी है, दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जीवन का लक्ष्य आज तक जो हमने सक्सेस रखा था, अब इट शुड बी पीस एंड हैप्पीनेस। और इसके लिए अपने जीवन को हमें ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा, राइट। देयरफॉर वी अगेन हैव टू कम डाउन टू द सब्जेक्ट ऑफ डिजाइन, यू हैव टू रीडिजाइन, यू हैव टू रीफ्रेम, यू हैव टू रीकलर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यू हैव टू डू री इंजीनियरिंग टू मेक आर लाइफ वंडरफुल, ब्यूटिफुल, होलिस्टिक एंड मीनिंगफुल। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सब्जेक्ट ऑफ डिजाइन। डिजाइन के विषय में आप सभी का मैं बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे आजकल होता है ना दोस्तों, डिजाइनर ड्रेस होता है, डिजाइनर किचन होता है, डिजाइनर फर्नीचर होता है, डिजाइनर कार होता है और डिजाइनर घर भी होता है। तो ये सारे डिजाइन के अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रोडक्ट, ओके। लेकिन आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हम अपने जीवन का डिजाइन कैसे करें। तो जीवन का डिजाइन करने के लिए हमें उसका विज्ञान को समझना जरूरी होगा और हमें यह समझना होगा कि वर्तमान समय पर कौन से इमोशंस का ट्रेंड चल रहा है, समाज में, देश में, विश्व में किस प्रकार की भावनाएं हो रही हैं और भविष्य में कैसे परिस्थिति हो सकती है, उसको देखते हुए वर्तमान समय पर हमारा जीवन का डिजाइन होना चाहिए। तो अभी और भविष्य में जो इमोशंस चल रहे हैं उसको मैं ए बी सी करके कैटेगराइज करूंगा। ए मीन्स एंग्जाइटी, बहुत ज्यादा चिंता फिक्र चल रहा है। बी इज द सिचुएशन इज रियली बैड, परिस्थिति खराब है, भविष्य में दोस्तों शायद और भी खराब हो सकती है। सी फॉर क्राइसिस, केओस और एब्सोल्यूट कंफ्यूजन, चारों तरफ भ्रम, अनिश्चितता और संकट का समय है। तो जब ये परिस्थिति है तो हमारा जीवन का डिजाइन भी पॉजिटिव ए बी सी, सकारात्मक ए बी सी। ए मीन्स जितना चारों तरफ एंग्जाइटी है उतना ए मीन्स अटेंशन। दोस्तों चिंता नहीं करनी है लेकिन चिंतन करना है, और किस बात का चिंतन करना है, स्व चिंतन करना है, राइट। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, आई हैव नो कंट्रोल ऑफ व्हाट हैपेंस विथ मी बट आई कैन टेक एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ व्हाट हैपेंस विद इन मी। चारों तरफ क्या चल रहा है मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैं स्व पर कंट्रोल करना मैं सीखूं, ये डिजाइन का पहला प्रिंसिपल होना चाहिए। दूसरा बी, सिचुएशन इज गोइंग टू बी बैड, इज गोइंग टू बिकम वर्स। ऐसे समय पर हमारे जीवन का डिजाइन ऐसा होना चाहिए हम ऐसे कर्म करें जिससे हमको ब्लेसिंग्स मिले। बी फॉर ब्लेसिंग, दुआएं। कहते हैं दोस्तों जितनी हम दुआएं कमा सकते हैं दुआएं जैसी दवाई नहीं, और यही दुआएं जो है हमारे लिए भविष्य में सुरक्षा का कवच बनेगा। सी, केओस और कंफ्यूजन के जगह पर हम क्लीन बने, क्लियर बने और क्रिएटिव बने। तो इस आधार पर हम अपने जीवन को डिजाइन कर सकते हैं, और ऐसे जीवन का डिजाइन करने के लिए एक बहुत सुंदर टेक्नोलॉजी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, भारत का एक बहुत प्राचीन टेक्नोलॉजी है और उसको कहते हैं राजयोग। और इस राजयोग की विधि को समझकर हम अपने जीवन को बहुत सुखदायी और आनंदमय बना सकते हैं। राजयोग दो शब्द से बना है, एक है राज और दूसरा है योग। राज मीन्स रहस्य, द सीक्रेट। राज मीन्स द किंग, राजा। और योग मीन्स संबंध जोड़ना, इट्स रिलेशनशिप। तो राज्यों को भी हम ए बी सी के द्वारा समझते हैं। ए मीन्स अटेंशन, कि मैं कौन हूं, हु एम आई। जैसे एक गाड़ी होता है और ड्राइवर होता है, ड्राइवर जब तक गाड़ी में बैठता है तो गाड़ी चलता है, लेकिन जैसे ही ड्राइवर गाड़ी से उतरा तो गाड़ी रुक जाता है। हमें राजयोग में ये बात को समझना है कि मैं कौन हूं। ये शरीर जो है ना एक बहुत सुंदर गाड़ी है, लेकिन ड्राइवर कौन है? और ड्राइवर है जिसको हम कहते हैं मैं आत्मा। उसको आत्मा कहें, सोल कहें, रूह कहें, फिजिक्स की भाषा में उसको हम ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न ये उठता है कि मैं आत्मा समझने से मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ता है, हाउ डज इट हेल्प मी। बहुत सिंपल है दोस्तों, सपोज एक ड्राइवर जो है गाड़ी में बैठे बैठे दिन रात गाड़ी चलाता है और ये महसूस करता है कि मैं ही गाड़ी हूं, राइट। अगर मैं उसको कहूंगा आपको मेरे घर में बहुत स्वागत है, आप प्लीज घर के अंदर आइए, वो कहेगा मैं घर के अंदर नहीं आ सकता हूं। घर के अंदर क्यों नहीं आ सकते हैं? बोले नहीं मेरी गाड़ी कह जाएगी। नहीं, गाड़ी को थोड़ी ना आने के लिए बोल रहे हैं, हम तो आपको आने के लिए कह रहे हैं। लेकिन ड्राइवर के साथ प्रॉब्लम ये हुआ है, वो ड्राइवर जो है गाड़ी में बैठ कर दिन रात वो बैठता है तो समझता है वो ही गाड़ी है, और फिर वो महसूस करता है मैं घर के अंदर कैसे जा सकता हूं, वहां तो स्टेप्स है, मेरी गाड़ी कैसे जाएगी। तो ऐसे ड्राइवर को हम कैसे मदद कर सकते हैं? उसको हम बहुत प्यार से कहेंगे, है ना, और ये दरवाजा खोलकर हम उस ड्राइवर से कहेंगे कि आप बाहर निकलो, राइट। और जैसे ही वो ड्राइवर बाहर निकलता है वो इतनी स्वतंत्रता का फील करता है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, हमने अपने आप को देह समझा और 2400 घंटे इस देह देह के संबंध में अटके रहे, राइट। मेरा नाम, मेरा पोस्ट, मेरा पोजिशन, मेरा डेजिग्नेशन, मेरा क्वालिफिकेशन, मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरा भाषा, मेरा देश, और इसमें हम इतने अटक गए। लेकिन जैसे हमें समझ में आता है कि मैं शरीर से अलग हूं, मैं आत्मा हूं, तो सबसे बड़ा फायदा इतनी स्वतंत्रता का फील होता है, राइट। इसीलिए जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति और वैसे ही हमारा सृष्टि बनता है। तो अगर हमारे लिए हम एक अच्छा दुनिया को डिजाइन करना चाहें तो आज से हम एक बहुत सुंदर स्मृति को लेकर आए कि आई द बीइंग इज अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। मैं प्रकृति के बीच में चमकता हुआ एक अदृश्य ऊर्जा हूं, राइट। नेक्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप इज ए फॉर आत्मा, मैं आत्मा हूं। सेकेंड स्टेप इज बी, ब्लेसिंग कैसे मिलेगा? जैसे हम अपने बुजुर्गों का, हमारे माता पिता का जब हम ध्यान रखते हैं तो हमको उनसे बहुत दुआएं मिलती है। लेकिन राजयोग में ये कहा जाता है कि हमको जैसे शरीर के माता पिता का ध्यान रखने से दुआएं मिलती हैं, आत्मा के माता पिता जिनको बहुत प्यार से परमात्मा कहते हैं, राइट, उनके उनको हम बहुत प्यार से ध्यान करेंगे। हम अपने मन को जब उस परमात्मा पर लगाएंगे तो नेचुरली परमात्मा से हमको दुआएं मिलेगी, राइट। इसे यहाँ पर सर्व आत्माओं के पिता उस परम ज्योति परमात्मा को जो सर्व धर्म मान्य है उनका बहुत स्नेह और प्यार से बाबा कहते हैं। और सी, हमारे जीवन में क्लीन, क्लियर और क्रिएटिव बनने के लिए परमात्मा के साथ योग अर्थात संबंध जोड़ना अर्थात कनेक्शन। जैसे हमारे जीवन के डिजाइन के लिए ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा एंड सी फॉर कनेक्शन, ये थोड़ा सा हमें अभ्यास करना होगा। तो द साइंस ऑफ वेलबींग में हमने सारे सब्जेक्ट को कवर किया। मैं एक मिनट के लिए मैं रिवाइज करता हूं उस पूरे प्रोसेस को, राइट। तो फर्स्ट वन जो था वो था मैकेनिक्स, जहां पर हम मन में जितने सारे विचार चल रहे हैं उसको हम स्टेबल कैसे करें। दूसरा सब्जेक्ट जो आज हमने देखा इस इंजीनियरिंग ड्राइंग, मन की भाषा चित्र है। तीसरा सब्जेक्ट जो हमने देखा इस सॉम, हम अपने स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड, तो मन को कैसे शक्तिशाली बनाए, अच्छा चित्र बनाए और एकाग्रता के द्वारा मन शक्तिशाली बनता है। चौथा सब्जेक्ट हमने देखा इस फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट। जैसे पानी जब शांत होता है तो हमारा जीवन का लक्ष्य मिलता है और जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम की हमको चाबी मिल जाती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमने देखा HMT, है ना, तो हमने देखा कि हमारा लक्ष्य बहुत होलिस्टिक होना चाहिए, हैप्पीनेस आ जाएगा, फिर हमारा जीवन मीनिंगफुल होना चाहिए और हमारे जो वाणी, वचन, कर्म और संकल्प बहुत मधुर होना चाहिए, राइट। फिर हमने डिजाइन को देखा, अब डिजाइन में हमने ABC को देखा, राइट, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा एंड सी फॉर कनेक्शन। अब लास्ट एंड फाइनल जो सब्जेक्ट है एंड दैट इज प्रोडक्शन, राइट, एक्चुअल प्रोडक्शन। तो एक काम करते हैं, तो चलिए अभी हम ये राज्यों का अभ्यास करते हैं और उस अभ्यास करने के लिए सागर के किनारे जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता बताते हुए, हमारे घर के नजदीक ही सागर का किनारा है, सागर का तट है, अरेबियन सी है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे साथ चलिए और सागर के किनारे में हम जाते हुए हम इस राज्यों का अभ्यास करेंगे। मोस्ट वेलकम, आप सभी का स्वागत है। आज प्रकृति के सुंदर सानिध्य में सागर के किनारे हम राज्योग का अभ्यास करेंगे। राज्योग में हम अंदर की प्रकृति को महसूस करते हैं कि मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ और आत्मा के अपना स्वधर्म, अपना आत्मा का अपना गुण, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप और शक्ति स्वरूप को महसूस करेंगे। और दूसरा स्टेप, हम सर्व आत्माओं के पिता उस परम ज्योति परमात्मा जो ज्ञान के सूर्य हैं, प्रेम के सागर हैं, शक्ति के स्रोत को मन से याद करते हुए वो वाइब्रेशंस लेंगे। फिर हम इस प्रकृति के पांचों तत्वों को ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस देंगे। विश्व के सर्व आत्माओं को हम सकाश देकर आज हम राज्यों का अभ्यास करेंगे। ओम शांति।
मैं इस विशाल सागर को देख रहा हूं। भले सागर में कितनी भी लहरें क्यों ना हो, लेकिन सागर की गहराई में संपूर्ण स्थिरता और शांति है। मेरे मन में उठने वाले संकल्पों की लहरों को मैं साक्षी होकर देखता हूं और धीरे धीरे एक अंतर की यात्रा के लिए तैयार हो रहा हूं। भ्रकुटी के बीच में मैं एक छोटा सा सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी, मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मेरा स्वधर्म शांति है। मैं स्थित प्रज्ञ हूं। हलचल के समय अचल अडोल हूं। मैं संपूर्ण स्थिरता को महसूस कर रहा हूं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। स्वयं के प्रति प्रेम, मेरा परिवार, देश एवं विश्व की समस्त आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना करता हूं। प्रकृति के पांचों तत्व, धरती, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इनके प्रति कृतज्ञता की भावना मैं महसूस कर रहा हूं। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। मुझे हर परिस्थिति को सामना करना या सहन करने की मुझ में असीम शक्ति है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। I am feeling very light, relaxed, yet powerful. मैं बहुत हल्का एवं तनाव मुक्त अनुभव कर रहा हूं। अब धीरे धीरे मैं अपनी मन की आंखों द्वारा उस परम ज्योति परमात्मा को देखता हूं जो हम सर्व आत्माओं के पिता हैं। शांति के सूर्य, प्रेम के सागर और शक्ति के स्रोत हैं। उन्हें बहुत स्नेह और प्यार से मैं याद कर रहा हूं। जैसे सूर्य का प्रकाश इस धरती पर पड़ता है, उसी तरह ज्ञान सूर्य परमात्मा से शांति, प्रेम और शक्ति के प्रकंपन मुझ आत्मा तक पहुंच रही है। मैं आत्मा एकदम शांत, स्थिर, संपूर्ण सुरक्षित और सुखदायी महसूस कर रहा हूं। इन द प्रेजेंस ऑफ माई सुप्रीम फादर एक्सपीरियंस माई सेल्फ टू बी वेरी सेफ, सिक्योर्ड and a feeling of well-being. परमात्मा से शांति, प्रेम और शक्ति के प्रकंपन इस विश्व के सर्व आत्माओं पर पड़ रही है। प्रकृति के पांचों तत्वों तक पहुंचकर उन्हें पावन बना रही है। दिल से मैं परमपिता परमात्मा को, जो अलमाइटी गॉड, वाहे गुरु और खुदा दोस्त हैं, उन्हें शुक्रिया और धन्यवाद करता हूं। क्षितिज में सूर्यास्त को अब मैं देखता हूं, इस विश्वास और निश्चय के साथ कि कल एक नया सूर्योदय जरूर होगा। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक नया सवेरा जरूर आएगा। वन डे एवरीथिंग वुड बिकम ओके विद पॉजिटिव हेल्थ हीलिंग एंड वेल बीइंग। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
Thanks a lot, Swami Bhai. It was simply absorbing. Over and above your insights, the scenic nature you portrayed, oh, tempting all of us to explore Kerala and enhance our well-being. We all are aware, safety and well-being are interlinked in any industry. 2 days back, there happened a major tragedy, an accident of enormous loss at Visakhapatnam. We pray for the affected people. In big industries, in spite of safety measures, there is occurrence of unfortunate accidents. Couple of years back, a similar catastrophe occurred in India's flagship steel plant, Bhilai Steel Plant. The tragedy has taken toll of many lives, shaken the spirit of collective, otherwise a cultured workforce. Overnight, the CEO is replaced. For the new leadership, it was an unthinkable challenge. How practice of meditation and application of wisdom helped tide over the situation. Let's listen to Mr. Arun Rath, then CEO of Bhilai Steel Plant.
Om Shanti. In our life, many times we long things to achieve something, like I have to prepare, I have to study so that I pass an exam, I have to prepare myself for an interview so that I get a job. Many times I have to learn something for developing myself. I have to learn communication skills so that I am able to do a public speaking. Something like that has happened in my life, where in the phase of my career where my time management was very difficult, I got attracted towards Rajyog and started practicing it, which I am still doing till now. And we also got a deep drive into the knowledge bank which Rajyog offers. Went into the knowledge bank, started reading things, listening things, viewing things. And it has started impacting my life in a very big way. But one thing happened one day when I was out of station in an adjacent city. I got a telephone call, I got an instruction to leave my workplace and take over an organization which had just faced a disaster in the previous day and where multiple human lives are lost. And listening to that, I was not very sure. I was, in fact, you can say I was scared, because I was not, the problem was so gigantic and the situation is so unprecedented. I was feeling as if I don't have that required competence or capability to face the situation. So, as I was a little scared inside me, I wanted to calm myself, and you always require a calm atmosphere and environment to do so. So, immediately rushed to a religious place which can offer me a good calm environment, where I went there and sat in a corner, connecting to the divine in a very intensive way, and almost surrendering to divine, telling that please take care of me, because I don't know how to handle the situation. And this was almost surrender to the divine. And almost spending an hour there, I came back to hotel in a very calm state of mind. And next morning I left for the place in the morning flight. And after reaching the airport, got the person who was in charge of that place to brief me. I did not have a well thought strategy or a plan so that, or a schedule of doing things. But things were coming to me as I was facing the situation. And I was very calm and had the courage. That was the only thing in me, but I did not have a well thought out plan or strategy or something to guide me, and I was getting guided instead of deciding what I should do. After talking to them, I came back to the accident site, the site of the disaster, and take stock of the situation. And after taking that, some idea came to my mind, let me go to the people who have lost the colleagues. That was very dangerous because the whole organization was full with rage, emotional outbursts, and grief. I mean, a deep grief always become anger. So the whole crowd was angry of the sudden loss of life. And there was a pocket of emotional outburst everywhere. And the most affected persons are the persons who are close to the people, who are colleagues, who are working with them, and they have seen them losing their life in front of their eyes. Obviously, my colleagues opposed the idea. They told, no, this is not the time to face these people. But again, something is insisting me, no, you have to go there, whatever may be the situation. But I was not knowing what will be the situation and what I am going to do facing these people. I don't know what is to be told. But I insisted on that. On my insistence, my people agreed, and I went to the place where these people were under deep grief, sitting in a room. I entered to the room. Normally, it is a room where only these people relax. And these people are not able to know. I mean, they were surprised to see me. And some of my colleagues, I didn't take a big team with me. Very few people, another 2-3 people went with me. And they just could not understand why this man has happened. And there was a lull. And after a brief lull, they could see, okay, he is our target. He is the target of the whole situation. And the whole anger of the group was directed towards me. There was huge emotional outburst, shouting. Everything was happening. And I was inside this crowd of people who are enraged, who can do anything, and we cannot tell them why they are doing, because they are under extreme grief conditions. That time I was keeping my calm and just waiting, standing there silently connecting to the divine and watching the situation, how the situation is going. This went on for quite some time. It has to subside. In that period, one person was also almost wanted to be physical, who was prevented by his own colleagues. And after some time, when the situation was a little normal, one of the person asked me, why you have come? He shouted at me, what do you want from us? Why you have come to us at this point of time? That was the time. In fact, I was not thinking of that they will ask me the question and I have to speak. So the words came from my mouth that, okay, I am not here to return your people to you. I am not capable of doing anything to the life which has already been lost. But I have come here to be with you to be with you, to spend some time with you and share your grief and pray for the departed soul and the people and for the soul who are not able to overcome their griefs. One of the most important thing which I also observed while visiting the organization, in spite of the deep grief, the grief has not overtaken the sense of responsibility of these people. So I also expressed my gratitude to the people. In spite of a deep grief, you have done your duty. You have brought back the organization. You have not affected the critical processes. That is one of the things for which I have to express my gratitude. That is the reason why I have come here. So then I requested them, why don't you join with me for a prayer for the people who have lost their life and to give strength to the people to overcome their grief. They are not expecting the prayer at this occasion. And they told, they just closed their eyes with folded hand, told, okay, let's be silent. Almost we do almost 1 minute, 2 minute silent prayer when we face such type of situation. I don't know, I have not come for that sort of a prayer, a structured way of 1 minute silence or 2 minute silence. Please open your eyes and I will be speaking out the prayer. You please recite the prayer with me. What came out from me, praying for the peace for the departed souls. This went on for 2-3 minutes, whatever words were coming to me at that stage I was speaking, and these people are reciting it. It's not the word, it's the passion, or it's the empathy which was coming from me. I was myself surprised with the words and feeling and emotions which were coming from me. And after some time I stopped and there is the silence was continuing. So I proceeded to leave the place, and just near the car I remembered the person who was just trembling. I told my colleague to get the person and I wanted to meet him. The person came with, he was still not very much normal. I just looked at him and told him that, I understand, you must be the closest person to the people who have died and you are not able to overcome the grief. But if you will be little peaceful, by venting out this anger and frustration towards me, I am for that. You can do anything to me and nothing is going to happen to you. You know, this a drop of tear came from his eyes, and a similar situation was also with me. And we have to embrace each other. And I looked at all the faces who before some time was having shouting and doing all the outburst. It was a calmness which has come to all the people. And as I entered in the car and sat there, I could feel that I have come here to manage the situation, to manage the crisis. But God has made me one step ahead. He gave me the power to heal. And I could feel the healing of the organization has started. And that was the beginning of the healing process, which I continued with so many incidents and actions for quite some time. And let me tell you, I was amazed by the power which I was getting to deal with the situation. So, as the people who are knowing me beforehand, they were also amazed at seeing a new capability in me. This was the power to face. Om Shanti.
Thanks, Rat Sahib. It's incredible. Let Almighty give you more power and wisdom to become a change agent, particularly Incredible is the transformation that has occurred in Bhilai Collective. The transformation in mindset attributes to a novel experiment. Peace House adjacent to CEO's office. Rightly said, happy minds produce happy results. Let's have a glimpse of Peace House in Bhilai Steel Plant.
सामान्यतया हमारा जीवन प्रतिदिन काम की अधिकता, पारिवारिक समस्याओं अथवा अनेक अन्य कारणों से अत्यधिक तनाव से भरा रहता है। तनाव की निरंतरता यदि लगातार बनी रहे और हम अपने मन को विश्राम ना दें, तो इसके परिणाम स्वरूप हमारे मस्तिष्क की कार्यक्षमता कम होने लगती है। विपरीत परिस्थितियों में हमारे व्यवहार पर हमारा नियंत्रण छूटने लगता है और हम बड़े ही असामान्य ढंग से प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं। ये वो समय होता है जब हमारे मनोमस्तिष्क में चल रहे नकारात्मक विचारों से हम अनभिज्ञ होते हैं और ऐसे अवरोधों को जीवन से निकालने की समझ व चेतना हम खो चुके होते हैं। हमारा अहम हमारी समूची समस्याओं के आड़े आ जाता है और हम गलत निर्णय लेने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है जब हम केवल और केवल शांति चाहते हैं, शांति की तलाश करने लगते हैं। ऐसी परिस्थितियों के पार जाने, ऐसी अनदेखी अनसुलझी समस्याओं से पार पाने के लिए हमने सृजन किया है एक शांत क्षेत्र का, जिसे हम कहते हैं शांति गृह या पीस हाउस। इस शांति गृह में आपका स्वागत है। यहां सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। हमारा मनोमस्तिष्क शनय शनय स्थिर चित्त हो रहा है। प्रसन्नता व शांति से हमारा तादात्म्य स्थापित होकर हमारे संपूर्ण अस्तित्व में सकारात्मक अनुभूति का प्रवेश हो रहा है। यहां शांतिपूर्ण परिवेश में अत्यंत शांत हृदय से हम सकारात्मक भावों और सकारात्मक विचारों को सुनते हैं।
I cooperate with head, heart and hand. I use my intelligence to support others. With good wishes and blessings, I uplift others.
अपने इंद्रियों को जागृत करते हैं और समष्टि के लिए अर्थात समस्त प्राणियों के लिए, इस चराचर जगत के लिए मंगल कामनाएं करते हैं। सभी के लिए अच्छा सोचते हैं। आपका मन विश्राम की ओर अग्रसर है और आपका तनाव लगातार घट रहा है। एकाग्रता का स्तर बढ़ रहा है। किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए आप ऊर्जावान हो चुके हैं। आप में सकारात्मक ऊर्जा प्रविष्ट हो चुकी है। अब अधिकांश उच्च स्तरीय बैठकों का आरंभ इस शांति गृह में कुछ समय व्यतीत करने के साथ हो रहा है। शांति गृह के अनुभव विभिन्न दृष्टिकोणों से कुछ इस प्रकार हैं।
I think the peace house helps us discover the inner peace in ourselves. It's a tool that gives us power to understand our inner self. I think it gives us great strength and gives us a positive outlook towards life.
The concept of peace house is effective and impressive. In fact, it helps us to shed out our negativity and transform into better, meaningful meetings.
I think Peace House is a wonderful gift to us, the young executives of Bhilai Steel Plant, given by our CEO. It has shown us a way to navigate through our stress-filled routine and also given us strength to face challenges.
I am very much grateful and thankful to CEO sir for introducing this mindful meditation. I am already practicing this mindful meditation and it is helping me to cope up in day in day out stress of my life, and it is also helping me in focusing my own day to day job.
I think this is a new concept in Bhilai Steel Plant. While focusing on the present situation, the complete awareness and the guided mindfulness played here, this has a high therapeutic value.
रोजमर्रा में हम सुख और शांति खोज रहे हैं जो कि हमें मिल नहीं पाती। पीस हाउस एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और मैं आभारी हूँ सीओ सर का ये हमें देने के लिए, और मैं इसे अपने परिवार तक लेकर जा रही हूँ।
कॉन्सेप्ट ऑफ पीस हाउस बिसाइड द कॉन्फ्रेंस हॉल इज वेरी इम्प्रेसिव एंड इट लेट्स पीपल टू शेड ऑल देयर नेगेटिविटी एंड इट प्रोवाइड्स अ मोर कम्फर्टेबल एटमोस्फियर ड्यूरिंग मीटिंग्स।
The idea of a peace room right next to the conference hall is quite impressive and a very good management tool. Apart from relaxing us, it also decompresses and transports you to a childlike state. This has facilitated us in taking calm, level-headed decisions, minus all the stress, negativity and panic.
The peace house is like a boon to us. It has helped bring a sense of tranquility into our lives, for which we are eternally grateful to see you, sir.
Peace House is a new concept in Bhilai Steel Plant. It encountered a new thing in me and it really works. It should be continued further.
आइए इस सकारात्मकता को, इस चेतना एवं ऊर्जा को हम ले चलें अपने घर तक, अपने परिवार तक, अपने स्नेहीजनों तक, परिजनों तक और इस जगत के सुदूर क्षितिज तक.
Thanks to all of you, we had an enriching day. The soul is enriched by two learned speakers. It's time to contemplate on the same. Tomorrow morning, we will have a beautiful lecture on balance sheet of life. Let's explore life's deposits and withdrawals, debits and credits, profit and loss by Brahma Kumar Bharat Bhushan Bhai from Panipat, tomorrow at 10 a.m. Thank you. Om Shanti.
Awakening to a new way of living.